सा एक आदमी था, उसके बाद जाहिर है इसकी इसने बहुत पैसा भी कमाया, बहुत बड़े बड़े मैंशन इसके थे, बहुत दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके मेहमान रहा करते होते। 2005 में पुलिस फ्लोरिडा में इसके बारे में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी, फिर ये रुकी। हुआ ये था कि ये जो यंग नौजवान बच्चे यानी चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर्स के नाम पे, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की हम बात कर रहे हैं। 36 साल की लड़कियां, 14 साल के बच्चे और इसको सेक्सुअली अब्यूज किया करते होते थे। अच्छा, ये वो खुद नहीं, वो वडेरों को ये लड़कियां प्रोवाइड करते थे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, उनके बेटे का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। जाहिर हम मीडिया की रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात होती है तो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनकी जो डिवोर्स की वन ऑफ द रीजन वाज कि वो भी इनके आइलैंड में पहुंचे थे। और इसको फिर दोबारा 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद दोबारा इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और वही सेक्स ट्रैफिकिंग के इनके ऊपर थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ये फाइल ओपन होने लगी तो बड़े बड़ों के नाम आना शुरू हो गए। जेफरी एप्स्टीन ने नेक्स्ट डे कोर्ट में अपीयरेंस देनी थी, उस रात में इनकी डेथ हो गई और कहा गया कि सुसाइड किया गया। और कहते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो मिल गई, वो एक घंटे की वीडियो नहीं मिली, शायद ये वही एक घंटा था जिसमें इनको रस्सा प्रोवाइड किया गया था। अब व्हाट हैपन्ड, वो एक घंटे की जो वीडियो नहीं मिली उसके पीछे क्या है उसके बारे में। अब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस केस को लिंक करने में इलॉन मस्क ने रोल प्ले किया था कि जब इनकी रिफ्ट पैदा होती है तो इलॉन मस्क ने इनकी एक वीडियो पोस्ट कर दी थी, जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक वीडियो पोस्ट कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक नहीं आए थे वो ये कहते थे, आपको याद होगा जेएफ कैनेडी के केस के बारे में कहते थे कि उसको उसकी रिपोर्ट को हम पब्लिश कर देंगे, विच इसराइल वुड नेवर लाइक। नंबर टू उन्होंने कहा था कि इसको भी हम पब्लिक कर देंगे। अब वो कहते हैं उस रिपोर्ट में है ही कुछ नहीं, जेफरी एप्स्टीन की रिपोर्ट में, बिकॉज अदालतें भी उनकी हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो इसमें मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो इसका मतलब है अदालतें भी फैसिलिटेट कर रही हैं इस वक्त की गवर्नमेंट को, अमेरिका की को, मगर डू यू थिंक ये आवाजें दबाई जा सकेंगी?
थैंक यू सो मच आरफा जी। आई थिंक के जी आपने बहुत अच्छा एक इंट्रो, ये जरूरी था कि जिन लोगों ने शायद ना सुना हो जेफरी एप्स्टीन के जी ना करंट हो कि जी इसमें क्या हो रहा है, तो ये बैकग्राउंड देना बड़ा जरूरी था कि जी एलिगेशन बेसिकली ये है, या जो मैगा के की, या जो अमेरिकन फार राइट अमेरिकन जो बात कर रहे हैं, बेसिकली बैकग्राउंड तो यही है जो आरफा जी ने बड़ा एबली दिया, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। आइडिया ये है कि जी एक ब्लैकमेलिंग रिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज चला रही थी, जिसके फ्रंट पे जेफरी एप्स्टीन नाम के ये साहब थे। इनके फर्क फर्क जगहों पे अचानक ह्यूज प्रॉपर्टीज हो गई थी, कैरेबियन आइलैंड में, कैरेबियन ओशन में, कैरेबियन सी में इनकी दो आइलैंड्स थे, स्मॉल सेंट जेम्स आइलैंड और लार्ज सेंट जेम्स, दो आइलैंड्स थे इकट्ठे। एक तकरीबन वो 70-75 एकड़ का था, एक 165 एकड़ का था, और इन आइलैंड्स में ये आप देख रहे हैं, अगर ये कहां है तो आप इसका एक जूम आउट व्यू भी देखेंगे तो इट शो यू कि जी ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के पास हैं जी, ये दो आइलैंड्स इनके थे, ये छोटे से, ये जो नीचे आप देख रहे हैं, और जब आप फिर इसको जूम इन करते हैं तो ये दोनों आइलैंड्स इनके अपने थे, ये क्यूबा के पास ये आइलैंड्स हैं कैरेबियन में। सो इसके अलावा इनकी न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, और इनके गेस्ट जो थे, मतलब वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इनके पास आके रहते थे, उनके कारोबारी ताल्लुकात थे इनके साथ। तो अब ये एक आम आदमी, सो आइडिया ये है जो इस वक्त अलेज कर रहे हैं लोग, और क्यों अमेरिकन जितने गुस्से में है कि आइडिया ये है कि ये मोसाद के लिए काम करते थे, और ये हर पावरफुल आदमी के ये इन्होंने कैमरेज लगे हुए थे, और ये उनकी वीडियोस बनाते थे, और ये छोटे बच्चों के साथ पीडोफाइल्स के केसेस में मुलविस थे, और लड़कियां और लड़के और सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग था। अब जो लोग आके इनके आइलैंड पे आते थे, या इनकी सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, एक रैंच भी इस बारे में इनकी बड़ी मशहूर थी, कुछ 7,000 एकड़ पे वो रैंच थी, तो वहां भी जो लोग आकर ठहरते थे तो वो उनके फिर ये वीडियोस रिकॉर्ड करते थे और उसके नतीजे में अमेरिका को एक तरह से कंट्रोल किया जाता था। उसमें मुख्तलिफ अमरीकी सदर के भी नाम है,
तो बिल क्लिंटन का भी नाम आता है,
बिल क्लिंटन का भी नाम। अब चूंकि ये पूरे अमरीकी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते थे और वो सारे लोग ब्लैकमेल थे, तो एलिगेशन ये है कि ये मोसाद जो थी ये अमरीकी तमाम बड़े बड़े लोगों को, बिलियनर्स को और पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने बनाया था, जिससे वो फिर इसराइल को एडवांटेज देते थे। इसके इसके बड़े मतलब दूर दूर तक इसकी बातें जा रही हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो वो बड़े मशहूर वो हैं, जो कि हर जगह जाके जो ईरान के साथ भी उनके जो 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 निगोशिएशंस कर रहे थे, जो यूक्रेन में निगोशिएशंस कर रहे थे, वो पड़ोसी थे इन साहब के, जेफरी एपस्टीन के, और बहुत सारे कनेक्शंस हैं। और जो जो पैलेंटियर कंपनी के जो ओन के जो के जो मालिक हैं पीटर टील, उन्होंने जो जेडी वैंस हैं उनको उनको बेसिकली पॉलिटिक्स में लाने वाले बहुत, तो ये बात बहुत ज्यादा फैल गई है। एंड अमेरिकन्स वांट टू नो कि यार हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है, क्या हम अच्छा। इसके और बहुत सारी वजूहत इस वजह से चलनी शुरू हो गई कि जैसे जैसे अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी, होमलेसनेस बहुत बढ़ी है, तो लोगों को ये फीलिंग है कि यार हम फॉरेन वॉर्स में हमने अपने मुल्क को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मकरूज कर लिया, तो हमारा सबसे बड़ा मसला तो हमारे अपने मुल्क में हमारे पास घर नहीं है और क्रेडिट कार्ड के बिल हमसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन हमें बताया ये जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला ईरान है, लेकिन हमें तो ईरान से कोई मसला नहीं है, हमें तो अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और अचानक ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था वो अरबपति हो गए और हमारे मुल्क में हमें कंट्रोल करते हुए, तो जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे दैट रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड इसराइल जो रही है, और जिसकी वजह से मतलब मिडिल ईस्ट में एक कंप्लीट हैजान रहा है। आप ये देखें ना, मतलब इराक टाइप का, अमरीका को इराक से डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इराक, सीरिया, लिबिया, ये तमाम ममालिक, और अभी जो ईरान से लड़ाई शुरू करवा रहे थे, बेसिकली इसराइली इंटरेस्ट। तो ये आवाजें अब हार्टलैंड अमेरिका से उठना शुरू हुई। अब तो लोग ये बातें कर रहे हैं, कैनेडी असैसिनेशन की बातें कर रहे हैं लोग, 9/11 किसने किया, ये अमेरिका में से अब आवाजें उठ रही हैं।
सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो जेफ कैनेडी के बारे में आपने कहा था कि वो उन फाइल्स को पूरे के पूरे को डिस्क्लोज करेंगे, अनकवर कर देंगे, मगर आपको याद होगा एक दफा पहले भी इन्होंने लास्ट टेन्योर पे तभी इन्होंने कहा था, मगर उन फाइल्स को तब तहाल क्लासिफाइड रखा गया। इस दफा भी इन्होंने बहुत बहुत कहा था कि उन फाइल्स को ये ओपन फॉर द पब्लिक कर देंगे कि फाइंडिंग्स, ये इन्वेस्टिगेशंस में कौन लोग थे जेएफ कैनेडी की असैसिनेशन में, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट अनकवर दोज केसेस।
अब अर्षद जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि जो जब जेएफके की असैसिनेशन हुई थी तो जो उस वक्त जो सीक्रेट सर्विस के चीफ थे और तो उनकी जो बेटी हैं वो जो जो बाइडन के सेक्रेटरी थे, क्या ब्लिंकन साहब, उनकी बेगम है, ठीक है जी। और ब्लिंकन साहब जो हैं उनकी रिलेशनशिप्स जब आप देखते हैं तो ये सारा सर्कल घूम फिर के इस सर्कल में जेफरी एपस्टीन भी आते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ, इस पे लोगों ने बड़ी ऑब्जर्व, हम उस तरह नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर सोशल मीडिया की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और चैनल्स की और है। बट
ठीक है,
बट जो जो बात कर रहा है, सो लेट मी काइंड ऑफ लिंक इट टू योर अर्लियर क्वेश्चन। आपका सवाल यह था कि क्या अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रंप इस सूरत हाल को अब दबा सकेंगे या ये रिपोर्ट्स इनको रिलीज करनी पड़ेंगी, स्पेशली जेफरी एपस्टीन वाली। और मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि ये ऐसी चीज बन गई है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। अब इसमें मसला ये बन रहा है कि अगर आप ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं और आपने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि इस तरह की एपस्टीन की रिपोर्ट है, क्योंकि उसके अपना जहाज था एक बोइंग 737-200 सीट्स वाला, तो जाहिर है उसके लॉग्स हैं, पैसेंजर के लॉग्स हैं एक्सेट्रा, तो ये बातें सारी आपने की हुई थी कि जी हमारे पास ये लॉग्स मौजूद हैं, हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, सेलफोन्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, अगर आप देखेंगे कि कौन कौन उस सेलफोन्स पे जाता रहा है उस आइलैंड पे एटसेट्रा। तो अब ये अवाम का ये ख्याल है, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि जी हमें कंट्रोल किया जा रहा था सेक्स ट्रैफिकिंग के थ्रू, हमारे सारे लोग इसमें करप्ट हैं, मुलव्वस थे, जिसकी वजह से वो अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे ब्लैकमेल। अब मसला यह है कि अगर अमेरिका ये रिपोर्ट रिलीज करता है तो जाहिर मोसाद और वो सारा वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो जाता है, जो कि उनकी रिलेशनशिप बहुत तबाह हो जाएगी और ये बात कहां जाकर के। दूसरा मसला ये है कि अगर आप इस रिपोर्ट को नहीं खोलते तो फिर तो जो इंसानी इमेजिनेशन है जो वो अलेज कर रहे हैं वो और ज्यादा तकवीयत पकड़ती जाती है कि इसका मतलब आप जो नहीं दिखा रहे आप छुपा रहे हैं, तो जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। सो इट्स समथिंग वेयर इट्स नॉट इजी टू गेट आउट ऑफ एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हॉटेस्ट टॉपिक सोशल मीडिया पे भी यही बना हुआ है, मेन स्ट्रीम चैनल्स में भी यही बना हुआ है, और पैम बॉन्डी जो हैं जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, लोग उनके रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इनके अपने अंदर स्प्लिट शुरू है, मतलब इस पे लोग कह रहे हैं कि जी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या जो 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 प्रेसिडेंट ट्रंप की फाउंडेशन है वो स्प्लिट हो रही है, उसमें रिबेलियन शुरू है, बिकॉज दे अमेरिकन पीपल आर एडमेंट कि जनाब हमारे साथ जो ये हुआ, वी हैव अ राइट टू नो कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, आपने वादा किया था कि आप हमें इन लोगों के नाम बताएंगे, आप इनको जस्टिस पे लेके आएंगे, तो वो जो भी हैं हम वो उन लोगों को देखना चाहते हैं। अब ये इसका पैरेलल आपको पता नहीं, आपको याद होगा कि मैंने अपना एक यूट्यूब पे चैनल पे एक जमाने में एक वीडियो बनाया था कि जिस दुनिया में पाकिस्तान की उस वक्त हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो एक इस तरह के वीडियोस बनाती हैं और आप मुल्क में किसी भी पोजीशन पे जिम्मेदारी की पोजीशन पे आप नहीं जा सकते जब तक आपके का कोई वीडियो मौजूद नहीं होगा। सो आपको एक पोजीशन से ऊपर एक रुतबा आपको रैंक दिया ही नहीं जाएगा जब तक आप पे कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म मौजूद ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूं, जब चेयरमैन नैब बन रहे थे, सो एक एग्जांपल ये है कि दो एग्जांपल्स देता हूं, एक तो ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में आप नहीं जा सकते जब तक आपके के लिए एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है कि जी ये ऑफिसर ठीक है या नहीं है, अगर आप ऑफिसर्स की बात कह रहे हैं। अब जैसे चेयरमैन नैब जो बने हुए थे और वो बड़ा स्कैंडलस थे, मतलब उनके ऑफिस में किस तरह वो एक ऐसी खातून जिनके शोहर को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था उनसे किस तरह की वो बातें कर रहे थे, और उस खातून ने तैयबा नाम उनका नाम था, उन्होंने वीडियो बनाया और वो सारी दुनिया के सामने वो वीडियो लेके आई। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये साहब चेयरमैन नैब बने थे जो एक मुल्क का मुख्तसिब होता है, तो आपका क्या ख्याल है कि बगैर किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के उनको इतना बड़ा रुतबा दे दिया गया होगा? नहीं दिया गया होगा। तो अगर नहीं दिया जाता और इंटेलिजेंस वालों ने उनको क्लियर किया हुआ था, तो आपका क्या ख्याल है कि इंटेलिजेंस वालों को उनकी ये हरकतें पक्का नहीं थी? तो सवाल यह है कि क्या इन लोगों को, बड़े लोगों को रुतबा दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि उनकी हरकतें मौजूद होती हैं? सो इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या काम है? क्या उसका काम ऐसे लोगों को ऊपर होता है कि ये हरकतें होती हैं, ऐसे लोगों को ऊपर आने से रोकना होता है? सब जाहिर तो जो जो जो, जो, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा था जिसमें हम बहुत सीखपा होते हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जमहूर, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो अपने आप को सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कहते हैं, अब आप उनके यहां देख लीजिए, उनका हमसे शायद ज्यादा बुरा हाल है। which is a very disappointing situation. It's इसमें हमें कोई अपने लिए प्राइड नहीं ढूंढना चाहिए. ओवरऑल आप इंसानियत को देखें कि जी ये हम
इंसानियत पामाली है. मगर सर अब देखिए ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप का और उनका मिशन था कि हम इस रिपोर्ट को जो है पब्लिक करेंगे, मगर मसला कहाँ पे आ गया. शायद दे कुड हैव एडिटेड इट एंड पब्लिक कर भी देते, मगर इलॉन मस्क ने जब इनकी रिफ्ट हुई थी तो उन्होंने एक क्लिप डाल दिया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब भी उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े हुए हैं. तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली उसने एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी थी. मगर वो तो बेचारा मर गया, उसकी खुदकुशी उसको ज्यादा लेकर डूबी क्योंकि अगले दिन उसने अदालत में पेश होना था. अब शॉन डिडी की बात कर लें, यानी रैपर थे, और आप इमेजिन करें कि इवन जस्टिन बीबर को बनाने वाले और बहुत सारे लोगों को बनाने वाले वो हैं. अभी रिसेंटली उनका वाक्य भी कोर्ट की केस उनका खत्म हुआ है. अदालतें यहां की भी ऐसे ही हैं. एक वो कि उसने अपनी बीवी को मारा था वो चार्ज लगा है, और एक और केस का चार्ज लगा है शॉन डिडी को. हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन इसकी स्टार्ट हुई थी तो ये जो इनकी कस्टडी में से चीजें निकली थी अनबिलीवेबल, जो बेड्स थे, रातों की महफिलें और होती थी, दिन की महफिलें, और डोनाल्ड ट्रंप उसमें भी गेस्ट रहे हुए. डू यू नो दैट
अरसन जी? एक मैं तो खैर मतलब शायद अजीत जी को एक बात करूं, हमें कैसे पता है कि एपस्टीन साहब मर गए? मतलब जो आई मीन हाउ डू वी रियली नो दिस?
उसका जनाजा हुआ था.
अगर देखें जनाजा होने से मरता थोड़ी है. मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट. मेरी ना चीज राय ये है कि शायद वो शख्स मौजूद है कहीं ना कहीं.
अरे नई थ्योरी डाल दी आपने, नई एक थ्योरी डाल दी आपने.
मेरा तो बहुत अरसे से ये ख्याल है, ये नहीं कि वो कभी सामने आएंगे, लेकिन देखे ना हर एक का अपना ख्याल हो सकता है.
आपने नई थ्योरी जब डाली ना तो उससे मुझे ख्याल है आप एयरफोर्स में भी रहे हैं ना
जी.
अच्छा चलिए, आप यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टॉक टू. इंडिया का जहाज उड़ता है, 45 सेकंड हवा में रहता है बोइंग, 45 सेकंड के बाद इसका क्रैश हो गया. आपने उसकी फाइंडिंग पढ़ी है? यानी वो कहते हैं कि इस जहाज में एक पायलट दूसरे से बात कर रहा है कि उसका इंजन को शट डाउन, एक भी नहीं दोनों, और वो कहते हैं दोनों. आई वॉज रीडिंग ऑल द रिपोर्ट कि दोनों के लिए उसको दोनों हाथों की जरूरत थी, एक वक्त में दोनों इंजन शट डाउन नहीं हो सकते. तो ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें 260 लोगों की तो डेथ हो गई है और 12 साल इसकी पुरानी सिर्फ उम्र थी, तो ये क्या लग रहा है आपको? अब पायलट तो बेचारे मर गए, वो तो हिसाब दे नहीं सकते. बोइंग ने अपनी जान छुड़ा ली है कि वो दोनों शट डाउन थे क्योंकि उसकी जो डेटा रिकॉर्डर है उसमें ये आवाज आई. कुछ फरमाना चाहेंगे इसके बारे में?
काफी इंटरेस्टिंग है. मैंने इसको बहुत अभी तक मैं क्योंकि भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी रिपोर्ट तो मुझे वक्त नहीं मिला, तो मैंने कहा यार इसको मैंने साइड पे पार्क किया हुआ कि इसको भी मैंने बैठ के पढ़ना. और उसमें वो ये कह रहे हैं कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड में जो अभी तक मुझे समझ में आई थी कि जी जो उनका ब्लैक बॉक्स था उसमें जो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है बिटवीन द पायलट्स, वो एक दूसरे को कह रहा है कि तूने फ्यूल क्यों किल किया. तो वो
और मजे की बात है, एक और चीज जो दिखने में कहते हैं कि आवाजों को तो रिकॉग्नाइज अभी ये कराएंगे, बट स्टिल लगता है कि जो को पायलट था वॉज एट द सीट एंड पायलट वॉज सिटिंग बिसाइड. और ये फ्यूल इंजेक्टर्स दोनों इंजन्स के बंद कर दिए गए.
मतलब नहीं हो सकता ना जी. मैंने अभी देखो सो ये आपको याद है जब ये शुरू में इस पे बात हो रही थी तो सबसे आसान काम ये होता है पायलट एरर डाल देना. इस केस में तो पायलट एरर भी नहीं है, वो तो कह रहे हैं जैसे कि पायलट ने जानबूझ किया. तो बट दैट डजंट हैपन. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन 787. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इसके और पैसेंजर जहाजों में इस तरह के मैनुअल सिस्टम्स नहीं होते कि पायलट का दिल चाहा तो जनाब उसने उनका फ्यूल बंद कर दिया.
मगर वो बंद करना भी कोई इतना आसान नहीं था. यानी उसको पहले उठाना होता है, कहीं पलटना होता है. इट्स अ लिटिल प्रोसेस.
नहीं, और जहाज करने नहीं देता. देखें आजकल के जो मॉडर्न स्पेशली जो पैसेंजर्स को कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत हाईली ऑटोमेटेड भी है ना जी. वो आपको ऐसे थोड़ी करने देता है कि जिसमें उसको नजर आ रहा हो कि आप इसको जानबूझ के मारना चाह रहे हैं तो वो आपको अलाउ करेगा. So I think there's much more to it, and I don't want to comment on this because I've not really, but jo abhi tak ki report aayi hai, it makes absolutely no sense. वो एक छोटा सा एक रैट कहते हैं कि जी वो एक छोटा सा अलग इंजन लगा होता है जब आपके दोनों इंजन किल हो जाएं अगर अचानक, और ये जहाज ने तो हार्डली अभी टेक ऑफ किया था, तो वो थर्ड इंजन जिसको वो रैट कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, वो इंजन एक्टिवेट हो जाता है और उस एयरक्राफ्ट का वो हुआ हुआ था. सो इंजन तो उसके दोनों दे डाइड डाउन. शुरू में ये भी बातें हो रही थी कि जी साइमल्टेनियसली दोनों इंजन में परिंदे चले गए थे जिसकी वजह से हुआ, विच अगेन यू नो द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर वेरी वेरी रिडिकुलस किस्म के हैं. बट सो वेल लेट आई थिंक लेट्स इंजेस्ट दैट टू रिपोर्ट फॉर अ वाइल बिफोर वी कैन कम टू मोर मे बी स्मार्टर और मोर एजुकेटेड या मोर कंसिडर्ड ओपिनियन ऑन दिस. अभी तक ये वाली बात कि जी किसी पायलट ने जान वो खुद ब खुद जनाब उसके फ्यूल लाइन्स बंद की हैं जैसे दोनों इंजन इंस्टेंटली मार गए हैं, इट्स नॉट मेकिंग मच ऑफ अ सेंस. ये क्या बात आप कर रहे हैं?
बहुत शुक्रिया. मैं सर आखिरी बात की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, और पहली बात तो ये मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अमेरिका ने, जाहिर हम पूरी दुनिया का ही जिक्र कर रहे हैं, कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, कि यूक्रेन को उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो मिसाइल शिकन है वो प्रोवाइड कर दी है. आज तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे वो नेटो के वेरी थे, मगर अब वो कहते हैं कि मैं एलाइज के साथ चलना चाहता हूं. व्हाट हैपेंड, व्हाट ब्रॉट दिस चेंज, एंड क्या व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी रिफ्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, या एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे दिमाग में आई कि कैश पटेल ने जेम्स कॉमी को और जो सीआईए के इंचार्ज थे उस वक्त 2017-18 के 2019 के, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के उसमें इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में यूएस मेडलिंग, रशियन मेडलिंग की, तो जेम्स कॉमी कहते हैं कि कैश पटेल के साथ, मतलब वो अपनी पुराना रिवेंज, बरसों दबा हुआ जो बुगज है उसको निकाल रहा है. इसके बारे में कुछ फरमाना चाहेंगे?
अब देखिए, ये असल में मैंने, आपने देखा कि आज मैं बहुत कैलकुलेटेड जरा बातें करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज यू नो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आज हो रही हैं आजकल, और अमरीकी कर रहे हैं खुद, जिसमें बहुत सारे रेशियल इश्यूज आ रहे हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग सेंस. से फॉर एग्जाम्पल कैश पटेल की अभी आप बात कर रही हैं, तो काश पटेल है, कैश पटेल जो भी उसका नाम है, उसकी जो 23 साल गर्लफ्रेंड है वो लोग कह रहे हैं और उसपे एविडेंसेस ला रहे हैं कि वो अर्लियर मोसाद के साथ काम करती थी. जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए लोग बात कर रहे हैं कि जी अब जो है ये ट्रम्प ब्लैकमेल हो रहा है, उसके लिए भी यही बात की जा रही है कि वो भी उसी मतलब जूश हैं, और फिर जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है, हालांकि मेक्सिको की 0.25% पॉपुलेशन जूश है, तो वो भी जूश हैं. और तो अब वो जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये अमेरिका और इसराइल का जो फंडामेंटल इशू है ये अब उठ के सामने आ रहा है, और ये अमेरिका के अंदर से आ रहा है, जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये बड़े वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स होंगे. अगर वाकई ही पावरफुल लोग ब्लैकमेल्ड हैं, और अगर वाकई ही प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसका हिस्सा हैं, आई हैव माय डाउट्स अबाउट दैट, बट लेट्स सी, वी डोंट नो हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स या हकीकत क्या सामने आती है. तो फिर तो वो जो बात अमरीकी कह रही है कि जी ये हमें कंट्रोल किया जा रहा है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप है लोगों का जो कि इस सारे के पीछे हैं, और एप्स्टीन जो है वो चाबी है एप्स्टीन का केस, जिसको अगर खोला जाए, जिसकी वजह से वो इतने इस पे एडमेंट हैं. तो ये जो आप बहुत सारी बातें कर रही हैं, एग्जैक्टली लोग ये कह रहे हैं कि ये सब फिर कनेक्शंस लिंक्ड हैं,
और ये कनेक्शन जो है जेएफ कैनेडी तक भी जाता है, एप्सटीन तक भी आता है, और आज के वक्त
यूक्रेन के इश्यूज पे जो आपने बात की, ज़ेलेंस्की पे जाता है, ये मैक्रॉन और पूरी साइंस।
चलिए जी, एक लाइटर मूड पे भी बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट मैक्रॉन पे तो मुझे तरस आता है। एक तो बेचारा प्रेसिडेंट मैक्रॉन जो फ्रांस के हैं, उन्होंने ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर बिफोर, मगर अब जब उनकी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली तो ही प्रेफर टू बी द प्रेसिडेंट। आई विश के ना ही बने होते, चुप करके इज्जत से परे हो जाते। उनकी बीवी उनसे तकरीबन 22 साल उम्र में बड़ी हैं, और उनकी वाइफ जो है शी इज अ पर्सन जो उनकी जो क्लासमेट थी उसकी मदर थी। सो रादर देन मैरिंग द क्लासमेट ही फॉल इन लव विद हर मदर एंड ही मैरिड हर। अच्छा, अभी क्या हुआ कि किसी ने उसको सू कर दिया, नहीं नहीं इन्होंने, इनकी वाइफ ने सू किया। वो दो औरतें हैं, उन्होंने कहा कि जो एक्चुअली ये इनका जो लास्ट नेम है, उन्होंने कहा ये औरत नहीं थी, ये आदमी था। तो वो उन्होंने एक्चुअली उनके भाई की जॉन समथिंग उनके भाई का नाम है, तो उनके भाई के साथ उनकी तस्वीर थी। तो इस खातून को जेएफ जो हमारे मैक्रॉन है इनकी बीवी, आपने वो कहानी पढ़ी है? बड़ी मजे की कहानी है, और जिसने नहीं पढ़ी वो जरूर पढ़े।
हाँ जी, वो कैंडिस ओवन है, एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर है, ये फार राइट की है, मैगा वालों की। उनको एक्चुअली सू भी किया था मैक्रॉन की ने,
या सर।
हाँ जी, एंड शी वन द केस, कि उसने कहा था कि ये एक्चुअली मर्द पैदा हुआ था, ये साथ में औरत तो इससे काफी सारी बोल बजारे जिस तरह चपेड़े में मारती है मैक्रॉन को, तो लगता प्यारा।
बहुत शुक्रिया। एनीथिंग एल्स? मैं आपसे जो आखिरी बात करना चाहती हूँ, आई शुड नॉट हैव आस्क्ड, बट आई थिंक सो वी एज अ होस्ट, हमारे लिए हमारे तमाम लिसनर्स बड़े इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में, दुनिया जहान में ही इस वक्त लाकानूनियत के दौर से है गुजर रही है, पूरी दुनिया लाकानूनियत में से गुजर रही है, और जिसमें जाहिर हमारा रोल मॉडल अमेरिका उसमें है, बरतानिया की बात कर रहे हैं, यानी फेस के सामने कुछ और फेस के पीछे कुछ और है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जितनी दुनिया की बुरी सूरत हाल है, और जिन प्रेशर्स में से मैं और आप गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क गुजर रहे हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए कि किसकी हुकूमत होगी, ये खेल दिन रात का इससे पहले भी होता रहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान ये खेल चलता रहा। अब जाहिर है वो उनका अलायंस चल रहा है, और पीटीआई जो है उसके जो लोग हैं जो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद नहीं। अब कहा जाता है कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, बजाय इसके कि हम वी ऑल गेट टुगेदर टू लेट आवर कंट्री बी स्ट्रांग, बी द पैट्रियोटिक पाकिस्तानीज। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस कि हम वतन की मोहब्बत की बजाय अशखास की मोहब्बत, ये किसी भी पार्टी के साथ लग सकती है, क्या वजह है इसकी?
अगर आप लॉजिकली कोई चीज सोचें तो फिर आपको ये मसाइल नहीं होते, क्योंकि फिर आप किसी एक शख्स की लॉयल्टी में नहीं होते, फिर आप लॉजिक की लॉयल्टी में होते। तो फिर अगर मैं और सो फिर आप कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, फिर आप मुल्क के बारे में सोचते हैं, फिर आप वी के बारे में सोचते हैं, फिर आप आई के बारे में नहीं सोचते। और लीडर वो होता है जो लोगों को यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है, और नेशंस वो पावरफुल होती हैं जो यूनाइटेड होती हैं, जो आपस में लड़ रहे होते हैं, जो तो अक्सर प्रॉब्लम ही ये है ना जी, कि हम लॉजिकल होने के बजाय और एविडेंस मांगने के बजाय कि जी ओके आप कह रहे हैं कि जी ये फलाना आदमी करप्ट है, ठीक, इसकी एविडेंस क्या है, ये प्रूफ है कोई, ये है या नहीं है, और फैक्ट्स क्या कहते हैं। अगर आप अच्छा, और मेरा ये ख्याल है कि इसमें इसके पीछे बहुत सारी और इश्यूज हैं, क्योंकि जब हम बचपन से अपनी सोसाइटी को या अपनी कम्युनिटी को लॉजिकली होना देना नहीं चाहते, मतलब एक तो मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, बट रिलीजन जहां पे बहुत ज्यादा है तो वहां पे यही बात शुरू होती है ना कि आप सवाल नहीं करते, आपको पहले जो कह दिया गया है आप ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लें। सबसे बड़ा दर्जा ऑफ फेथ ही है कि यू जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग विदाउट अ क्वेश्चन, सो दैट क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। देन जो अब्बा जी ने कह दिया, अब्बा जी बड़े हैं, अब वो उन्होंने अच्छी बात की है या बुरी बात की है, अब्बा जी को सवाल नहीं करने, आप स्कूल चले जाएं। मास्टर जी ने कहा कि कल आपने ये सीख के आ जाना है, इसकी कोई तुक है या नहीं है, मास्टर जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। तो आपका एक कल्चर बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम योर अर्लिएस्ट डेज ऑन द प्लैनेट टू द एनवायरमेंट एट योर होम, देन द एनवायरमेंट एट स्कूल, देन द एनवायरमेंट एट योर जॉब्स, बॉस ने जो कहा, हम सारी उम्र ब्यूरोक्रेसी में भी यही देखते रहे और फौज में भी वही एनवायरमेंट है और हर दफ्तर में और प्राइवेट सेक्टर में भी वही एनवायरमेंट है कि लोग वो बात नहीं कर रहे होते जो वो समझते हैं कि ये ठीक बात है, वो देख रहे होते हैं कि बॉस सुनना क्या चाहता है। तो जो बॉस सुनना चाहता है वो कहा जाए बजाय इसके कि जी जो रियलिटी है वो कही जाए। तो अगर हमने सबने हमारी जब आदत बन गई स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होम्स टू आवर प्रोफेशंस के जी हम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि लॉजिकली क्या ठीक है, सच क्या है और गलत क्या है, इट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज के जी हमने बगैर तहकीक किए, बगैर अपना जहन इस्तेमाल किए, एक भेड़ चाल के तौर पर चलना है, तो फिर इस तरह की बातें होती होती हैं एंड दे देन इम्पैक्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, देन वी बिकम अ कल्ट। आई मीन ट्रंप का भी इशू इज काइंड ऑफ अ कल्ट काइंड ऑफ एन इशू। सो दिस इज ट्रू फॉर पाकिस्तान, दिस इज ट्रू फॉर, और अब आप देखें ना जो पाकिस्तान में डिवीजन है, जो पॉलिटिकल डिवीजन है, उसकी कोई लॉजिकल तो है ही नहीं ना, आप लॉजिकली तो एक दूसरे से बात करने पे आमादा ही नहीं, सिर्फ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ एक दूसरे को गालियां देना, सिर्फ एक दूसरे पे तंज और मजाक करना है, कोई अचीवमेंट्स, कोई एविडेंसेस, इस पे कोई बात नहीं है। सिर्फ कल तक अगर सिर्फ मेरा मतलब खान साहब को छोड़ा जाए या खान साहब को ना छोड़ा जाए, मियां नवाज शरीफ को अच्छे हैं या खान साहब अच्छे हैं, मतलब इसके अलावा कोई मुल्क की कोई बात नहीं है।
वेरी सैड, बहुत शुक्रिया। इसमें ये कि अगर आज रशिया के पर मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ, और मुझे पता है आप लोगों को मेरा बोलना बाज़ औक़ात अच्छा नहीं लगता, और मेरा दिल चाहता है कि आप लोग भी लॉजिकली न्यूज को देखिए, लॉजिकली क्वेश्चन भी कीजिएगा। 100% टैरिफ रशिया के ऊपर लगाए, 100% रशिया के ऊपर तो असर होगा सो होगा, मगर रशिया के नेबर्स को पनिशमेंट बहुत अच्छी मिलेगी, विच इज चाइना एंड इंडिया। मगर रशियंस ने और ईरानियंस ने इन तमाम सैंक्शंस के बावजूद अगर जिंदगी गुजार ली, इसलिए कि देवर पैट्रियॉट्स, बड़े मुहिब वतन थे, उसमें नेशनैलिटी का जज्बा निस्बतन ज्यादा था। वी आर नॉट टीम प्लेयर्स। ईमानदारी की अगर बात कर लें तो हमारी हॉकी भी फेल हुई तो बिकॉज वी आर नॉट टीम प्लेयर, हमारी क्रिकेट भी फेल हुई तो वी आर नॉट टीम प्लेयर, बिकॉज उसमें यह कि हर आदमी अकेला अकेला जब अपनी कारकर्दगी को दिखाता है तो वो डिफरेंट शो करता है। सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरा बल्कि अगला प्रोग्राम जरूर सुनिएगा, अगला प्रोग्राम जनरल लोधी के साथ है। आपको पता है साबिक आईजी पंजाब जो पुलिस और डायरेक्टर आईजी हाजी हबीबुर रहमान, मैं हैरान हूं। पहली बात तो ये नाम के साथ हाजी लगाने की क्या जरूरत है, हमें पता है कि आप जिस पोजीशन के ऊपर हैं, आपको तो वैसे ही बतेरों ने हज करा दिए होंगे, बहरहाल दिस इज अल्लाह का सुभान की शान है कि वो बुला लेते हैं, मगर इतने इतने इंकशाफात आपने कर दिए, इतने इंकशाफात कर दिए, तो आपने अपने किरदार के बारे में क्या बताया, क्या बताया आपने किरदार के बारे में, कि आपने हर चीज पाकिस्तान की बिकती हुई दिखा दी, और आज के दौर में भी जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आई गारंटी हर किसी ने किताब लिखनी है और हर किसी ने वो फैक्ट्स जाहिर करने हैं जिसकी वजह से उसकी किताब को नंबर वन रीडिंग का अवार्ड मिलेगा, बिकॉज मनी टॉक्स, हम वी कैन सेल एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। इस किताब کو دیکھیے گا آئی جی پنجاب جو سابق آئی جی پنجاب ڈائریکٹر آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے حاجی حبیب الرحمان انہوں نے جو انکشافات کیے, اٹس سیڈ, اٹس ویری پتھیٹک. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لوں گی اس کے بارے میں سر.
بس کیا کنکلوڈنگ ریمارکس دینے ہیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بڑا آدمی بننا ہے تو آپ کی ویڈیو ہونی چاہیے, نہیں تو آپ ٹرک چلائیں گے. یہ کنکلوڈنگ ریمارکس,
اگر بڑا آدمی بننا ہے تو ویڈیو ہونی چاہیے ورنہ آپ ٹرک چلائیں گے. یہ بات کنکلوڈنگ ریمارکس بہت اچھے ہیں سر, بہت شکریہ سر آپ کا.
تھینک یو
رحیم صاحب سے آپ کی بات چیت کرائی. پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیے گا. دو ایک باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بڑی امپورٹنٹ. میں بتایا نا میری ایک اور اپنی چیز جو تھی وہ کھوئی ہوئی تھی, تو بہرحال ابھی مجھے ملی ہے, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. چند ایک اسپانسرز ول کم بیک, پلیز اسٹے ٹیون.
یو آر لسننگ ٹو ڈبلیو ٹی او آر 770 اے ایم ینگز ٹاؤن ٹورانٹو.
کھانا ہو تو آ جاؤ شاہین, شاہین ٹکا اور کباب.
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
مجھے مزے دے چکن ٹکے کباب بریانی دال تڑکا,
لاہوری اسٹائل ناشتہ, مزے دار کڑھائی, ملٹ واٹرنگ کباب اینڈ سیزلنگ باربیکیو آئٹم.
شاہین ٹکا اور کباب
ان فلیمنگٹن مال.
خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو, آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن. فلنگس کراؤنز بریجز کلیننگ ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس, فری کنسلٹیشن, دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا, 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ, 299-7466.
اس کو آخر میں دے یقین کی حد کے پاس پاس.
پراپرٹیز ریزیڈینشیل اور کمرشل, بائنگ اور سیلنگ,
انویسٹمنٹ پراپرٹیز, کنوینئنس ان دی ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو,
وی ول ارینج یور مورٹگیج,
آلسو ا ہاؤس وارمنگ گفٹ.
سروس از آر پرائیورٹی,
کسٹمر سروس از آر پرائڈ. پلیز ایکسپیرینس دی ڈفرنس. آپ گھر خریدنا یا گھر کو بیچنا چاہتے ہیں, گھر کی ایویلیویشن کے لیے ایک دفعہ کال کیجیے عارفہ مظفر, 6478962458.
اکال ٹرک اینڈ لوم, تہاڈے ٹرک بادشاہ دی کوالٹی سروس, ریپیئر, آئل چینج, واش تے مینٹیننس. ایک اور خوشخبری, نارتھ امریکن, چائنیز تے کورین نویں تے استعمال شدہ ٹائر وتھ فل وارنٹی.
اکال ٹرک اینڈ لوم, 1776 میئر سائڈ ڈرائیو, 905-565-1100,
905-565-1100. جی صاحب, پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر, اور میں نے آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات چیت کرنا بڑی ضروری تھی, اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گی, مگر ایک کوک اسٹوڈیو سے شیر علی بگاگت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. عارف لوہار صاحب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. عارف لوہار از کمنگ, اٹس اونلی 6 ڈیز لیفٹ, 6 دن کے بعد, دیٹ از 20th of July کو یہ پروگرام ہے. 20 July کو عارف لوہار ان کے بیٹے پرفارم کریں گے. اس میں دیپ جنڈو بھی ہوں گے اور اس میں روچ کلا بھی اس میں موجود ہوں گے. گریٹ کینیڈین کسینو ریزورٹ میں یہ پروگرام ہوگا. ٹکٹس کی پرائز $29 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 29 کی بھی ہے, 50 کی بھی ہوگی, 100 کی بھی ہوگی, نال سامنے بیک بھی تھی گانا سن سکتے ہو. تو آپ نے واجد ملک صاحب کو کال کر لیجیے گا, 416-827-3333. دس کمنگ سیٹرڈے کو یہ پروگرام ہوگا ان کا. میں ڈاکٹر پدمجا کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. شی از ان اسکارپرو, وارڈن اینڈ شیپرڈ کے انٹرسیکشن کے اوپر ڈاکٹر پدمجا کا کلینک ہے. شی از اے ڈینٹسٹ, 6 ڈیز اے ویک ان کا کلینک کھلتا ہے. کراؤنز, بریجز, ڈینچرز, ڈفرنٹ ڈاکٹرز یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ ٹریننگ کی بات کریں یا اگر آپ نے دانت نکلوانے ہیں, روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہے, میں آپ کو یقین دلاتی ہوں, دیر از نو بڈی بیٹر دین ہر. پلیز ڈو کانٹیکٹ ڈاکٹر پدمجا. آپ کی اسمائل کو خوبصورت سے خوبصورت کر سکتی ہیں, اور ریگولر ڈینٹل چیک اپ بہت ضروری ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, everybody is covered as per our income. Everybody is covered for free, but you have to enroll yourself. Dr. Padmaja ka number le lijiyega, aap unse pooch bhi le, how can you enroll yourself? Unka number 416-299-7466-299-7466 unka number hai, 3410 Shepherd Avenue East. ये बनता है नॉर्थ ईस्ट नुक्कर पे जो बिल्डिंग है ना उसके थर्ड फ्लोर के ऊपर डॉक्टर पद्मजा है. विलेज टेस्ट नासिर चट्ठा साहब यहाँ पे होते हैं और विलेज टेस्ट पे जरूर पहुंचिए 9052323663. दे आर ओपन 7 days a week वो खुले होते हैं. चांदनी बैंक्वेट हॉल, बैंक्वेट हॉल्स हैं, नंबर ऑफ हॉल्स हैं इनके. ब्रैम्पटन में 2 हैं, मिसिसागा में, चांदनी विक्टोरिया बहुत बड़ा हॉल है. अगर आप इनका कंट्री साइड पे चले जाएं तो ओकविल में बहुत खूबसूरत गोल्फ कोर्स है. आई विश के एक दिन मैं आपको वो उनके हॉल्स भी दिखा सकूं. तो अगर आपके यहाँ कोई शादी ब्याह की प्रोग्राम है तो प्लीज डॉक्टर पद्मजा से राब्ता कर लीजिएगा. नैशिक, अगर आप अपने घर में रेनोवेशन करवाना चाहते हैं तो अली इनका नाम है, फहीम अली. ही इज इन रेनोवेशन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर आपने अपना ड्राइववे बनाना चाहते हैं, बार्गेन जरूर कीजिएगा. मैं बल्कि अली से बात यही कह रही थी कि अली, मेरे लिसनर्स तो मेरे मेरे मेरी मेरी जान है. दे आर, यू नो, आई एम व्हाटएवर आई एम इट्स बिकॉज ऑफ आवर लिसनर्स. तो आप बिल्कुल, मैं आपको ओपनली कहती हूँ, प्रोग्राम साज़ो बाज़ का रेफरेंस दीजिएगा और बात करें. वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज वेरी अकोमोडेटिंग. अगर आपने किचन, वॉशरूम, बेसमेंट, ओपन कॉन्सेप्ट देना है, फ्लोर चेंज करना चाहते हैं, लैमिनेट या वुड फ्लोर करवाना चाहते हैं तो अच्छा. साइड एंट्रेंस के लिए अगर आपको सिटी परमिट चाहिए तो भी आप रब्ता कीजिएगा 8387837 उनका नंबर है. आइए साहब, एक गीत की तरफ आपको लेके जाने लगी हूँ. आमिर ने पता नहीं क्या लगाना इसका मुझे कहा है, आई डोंट नो. बस इसने भी डांटना ही है मुझे कि आप मेरा कहा नहीं मानती. आई हैव नो क्लू क्या चीज पेश करनी है, मुझे नहीं पता. जो भी लगाना है आमिर खुद ही लगा देंगे. मैंने आपके साथ 2-3 चीजें शेयर करनी थी मगर अच्छा जी, उम्र की गठड़ी आपके साथ खोलती हूँ. हैं, ओए, उम्र की गठड़ी खोलने से मुझे याद आया. आप बताए कि कैमरॉन, कैमरॉन ये अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां पे 92 इयर्स प्रेसिडेंट है. और मजे की बात मैं बताती हूँ कि वो फिर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं. मतलब आप देख लीजिएगा, जिस बंदे को मतलब लत लग जाए फिर वो जाने का नाम नहीं देता. तो ये सिर्फ हमारे मुल्क की प्रॉब्लम नहीं, दीज आर ऑल इंटरनेशनल प्रॉब्लम. जिस बंदे को एक बार हुकूमत मिल जाए ना तो वो जाने का नाम, लेने का नाम नहीं लेता. तो अच्छा, मैं आपके साथ उम्र की गठड़ी खोल के बैठती हूँ. वो कहते हैं चल उम्र की गठड़ी खोलते हैं और देखते हैं. बहुत प्यारी पोएम है. चल उम्र की गठड़ी खोलते हैं और देखते हैं, आमिर इसी तरह का कोई गाना निकालना. इन सांसों की तजहीक में से, इस माहो साल की भीख से, एक जरब जमा तफरीक में से, क्या हासिल है क्या ला हासिल. ऑल द इयर्स व्हाट आई स्पेंट, जितनी मेहनत की, जमा तफरीक हासिल, हर चीज में क्या हासिल. चल उमड़ की गठड़ी खोलते हैं, चल गठड़ी खोल के लम्हों को, कुछ वसल और हिजर के बरसों को, कुछ गीतों को, कुछ अशकों को, फिर देखते हैं और सोचते हैं. ये दर्द भरी सौगात है जो, ये जीवन की खैरात है जो, एक लंबी काली रात है जो, सब अपने पास ही क्यों आई, ये हमको रास ही क्यों आई. जो और किसी के नाम हुआ, ये देख सुबह का मंजर था जो, सुबह से मिसले शाम हुआ. और ये मेरा आगाज पड़ा जो, बदतर तर इंजाम हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह, लिव अ गुड लाइफ. तो अब छोड़ से आ देख किधर, ये हब्स में पड़ा और साथ के कुछ उकड़ी उकड़ी सांसें हैं. एक धुंधला धुंधला मंजर है, उजड़ी उजड़ी आंखें हैं, ये झुलसे हुए कुछ ख्वाब है जिनके साथ कोई ताबीर नहीं. ये देख हिनाई हाथ भी है, ये देख हिनाई हाथ भी हैं पर वसल की एक लकीर नहीं. दो नाजक होंठ गुलाब से हैं, पर दाद जो दे वो मीर नहीं. एक इस मोहब्बत वाला है और इसकी भी तफसीर नहीं, बस इतनी हिम्मत ही तुझमें.
बस तेरी आंखें भीग गईं। अभी और बहुत से लम्हे हैं, अभी और बहुत सी बातें हैं। अभी हिजर भरा एक हिजरा है, एक हिजर भरा एक हुजरा है, अभी दर्द भरी एक कुटिया है। चल छोड़ इस दर्द कहानी को, रोक आंख से बहते पानी को, आज ढूंढे कहीं उस गठड़ी को। एक हिजर आलूद सा वादा है, वादा भी सीधा सादा है, बस अपने अपने रास्ते पर चलते रहने का इरादा है। तू देख अगर वो मिल जाए, मुमकिन है जख्म भी सिल जाए, वरना है हम हिजर जो काट चुके वो इस जीवन से भी ज्यादा है। वाकई नामिया आप भी बस सुपर है। बहरहाल हमारी आसानियां फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियां फरमाइए। सांसों की माला उस्ताद राहत फतेह अली खान, इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, इंजॉय साहब इंजॉय। सब सांसों की माला में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करती चलूं और फिर मैं आपसे जाहिर है आज जनरल लोधी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। यहां पे एक प्रोग्राम है वॉलेंटरी कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के साथ वॉलेंटरी डिस्क्लोजर। बाज़ोकात बहुत से लोग एवरी ईयर हम टैक्सेस अपने जमा कराते हैं, बाज़ोकात कोई गलती अगर हो जाए और इंसान को बाद में एहसास हो जाए कि मेरे से ये गलती हुई, वॉलेंटरीली वो डिस्क्लोज इसको करते हैं। अभी रिसेंटली साहब ऑटवा की जो खसूसी एक अदालत है, कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी जो है, वो उन्होंने ये वॉलेंट्री डिस्क्लोजर
जो प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपनी गलती का इतराफ कर लिया था। तो इस प्रोग्राम वीडीपी जिसको कहा जाता है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर प्रोग्राम के तहत जितने जो टैक्स देने वाले हैं उनको मौका दिया जाता है कि माजी में अगर आपकी कोई टैक्स के बारे में आपसे गलती हो गई हो तो यकीनन आप इसमें वीडीपी के प्रोग्राम में या वॉलंटरी डिस्क्लोजर प्रोग्राम में आप शमूलियत इख्तियार करें और यकीनन अगर आपसे कोई गलती हुई है उसके बारे में इस्लाह कर लें। तो अब हुआ ये कि बुनियादी शरायत ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वॉलंटरी डिस्क्लोजर प्रोग्राम पे मैंने अपनी गलती का एतराफ कर लिया तो हो सकता है मुझे जुर्माना हो जाए या मालूमात में अगर ताखीर हो कि जो इंकशाफ करते हैं वॉलंटरीली डिस्क्लोज करते हैं उनमें एक साल रेवेन्यू जो है वो की मालूमात एक साल पर होनी पिछले साल या पिछले साल या उससे पिछले साल की होनी चाहिए। इसकी जानिब से वो सीआरए की जानिब से अगर कोई तफ्तीशी कार्रवाई शुरू की जाती है तो वीडीपी के बाद यानी वॉलंटरी डिस्क्लोजर प्रोग्राम के बाद की जाती है। दरख्वास्त के साथ तखमीनी तौर पर वाजिबुल अदा टैक्स की रकम अदा करना लाजमी होता है, यानी जिस आदमी ने महसूस किया है कि मेरे से फलां साल में गलती हुई है और मैंने शायद टैक्स कम पे नहीं किया था, आप वीडीपी प्रोग्राम के तहत वो करते हैं, आपका अकाउंटेंट एक अमाउंट एस्टिमेट करता है, वो अमाउंट भी साथ आपको लगाना पड़ती है। इसमें लाजमी है कि मालूमात बिल्कुल सच्ची होना चाहिए, तमाम मुतल्लिका सालों के लिए दुरुस्त मालूमात देना लाजमी। अब वो कहते हैं सिर्फ पिछले 10 साल तक का जुर्माने और सूद माफ करने का इख्तियार जो है। अगर किसी पुराने टैक्स साल का रिकॉर्ड मौजूद न हो तो दरख्वास्त दिंदा को माकूल कोशिश करके आमदनी का अंदाजा लगाना, 10 ईयर्स बैक तक ये लोग जा सकते हैं। अभी रिसेंटली एक केस था उसके हवाले में जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है उसका मौकफ इसके बारे में बहुत सख्त हो गया। हुआ ये कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर प्रोग्राम के मुताबिक सीआरए आपसे किसी किस्म की मालूमात तलब कर सकता है और आखिरी तारीख के भी आपने इस तारीख तक अपनी तमाम की तमाम जो मिसिंग मालूमात है वो जमा करवानी है। बहरहाल अभी ये स्टीवनसन हुड टॉन्टन एक कंपनी है, टैक्स माहिर कंपनी है, उसने सीआरए की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद उसने कहा है कि जो दरख्वास्त गुजार है उसके रास्तों को महदूद कर दिया गया, यानी ही डजंट हैव अ पाथ टू गो। बाज़ोकात टैक्स दहिंदगान गैर दानिस्ता तौर पर ताखीर कर बैठते हैं या मालूमात मुकम्मल जमा नहीं करवाते। अगर कहीं आप मेरे से आपसे टैक्स की मालूमात में कोई कमी हो गई है तो जाहिर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बैड भी हो सकते हैं। माहरीन का मशवरा है कि टैक्स जो दहिंदगान है वो वॉलंटियर डिस्क्लोजर प्रोग्राम में शमूलियत से कबल तजुर्बाकार टैक्स वकील का जरूर शामिल होना चाहिए। ये ऑटवा की एक एजेंसी है, उसने टैक्स दहिंदगान की रजाकाना इंकशाफात के प्रोग्राम के तहत दी गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसे अदालत ने बरकरार रखा है। ये फैसला मई 2025 में सुनाया गया था जहां अदालत ने दरख्वास्त गुजार कंपनी जो है उसकी अपील मुस्तरद करते हुए सीआरए के फैसले को दुरुस्त करार दिया। अब ये क्यूबैक के शहर लासाल में ये कंपनी कायम की गई थी। 2019 में वॉलंटियर डिस्क्लोजर प्रोग्राम के तहत इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने 2008 और 2017 के सालों में आमदनी को प्रॉपर जाहिर नहीं किया, कोई कमी कोताही रह गई थी, लेट देम डू इट। और कंपनी ने जो वो कहते हैं सीआरए की दरख्वास्त के जायजे के दौरान उनके वकील जो इस चीज का मजाज नहीं था 5 अक्टूबर 2022 को राब्ता किया और टैक्स रिटर्न फ्राहम करने की दरख्वास्त की थी। कंपनी का मौकफ यह है कि अपनी अपील में उन्होंने कहा है कि तमाम मालूमात फ्राहम की थी जिस पर सीआरए को जुर्माने या सूद माफ करने का इख्तियार हासिल था, यानी पिछले 10 साल के टैक्स। कंपनी कहती है कि 2007 का टैक्स रिटर्न फ्राहम न करना एक मामूली कोताही थी जिसे सीआरए को वॉलंटियर डिस्क्लोजर प्रोग्राम की दरख्वास्त मुस्तरद करने की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए था। तो मतलब एक गलती हुई तो ये तो नहीं कि आप हमारी फिर सुनवाई न हो। तो अदालत ने इसके बारे में जो फैसला फराहम किया है कि उन्होंने कहा है कि सीआरए को इख्तियार हासिल है कि दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद कर सके कि वो मालूमात फराहम न की गई जो 10 साल से पुरानी ही क्यों न हो। اور اگر مہلت کے باوجود آپ نے سی آر اے کو وہ ریکوائرڈ ڈاکیومینٹس نہیں دیے تب بھی سی آر اے کے پاس یا آپ کی درخواست کو مسترد کرنے کا حق ہے. اب ماہرین جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ کہہ رہے ہیں. لیٹس سی ہاؤ دس تھنگ سیٹل ڈاؤن. پروگرام آپ سن رہے ہیں ساز و آواز. میں آپ کو ایک کمرشل کی طرف لے کر کے چلتی ہوں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر 4166201778 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے. اور پلیز سپورٹ
ورکر کیوں بڑھنا چاہیے دجیاں دی جیون وچ بدلاؤ لیاون لئی. صرف 5 مہینیاں وچ اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اتے دیکھ بھال وچ اپنا کریئر شروع کرو. ودھیرے جانن لئی ontario.ca/gopsw تے جاؤ. اس لیے ادائیگی انٹیریو سرکار والوں کیتی گئی ہے.
ताजा सब्जियां लई तुहाडा अपना फार्म कैलगर सब्जी फार्म जिथे तुसी लै सकदे हो निखरे पौधे मिट्टी गमले अते हर तरह दे फुल ते सब्जियां दी पनीरी. अपने घर विच कोई भी सब्जी या फुल दे पौधे उगाण लई कैलगर सब्जी फार्म ते आओ. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕੈਲਡਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 905-840-9000 905-840-9000.
A call truck and loom.
Sade truck badshah di quality service repair, oil change, wash te maintenance. Ek aur khush khabri. North American, Chinese تے Korean نوے تے استعمال شدہ ٹائرز with full warranty.
A call Truck and Lube 1776 Mearside Drive 905-565-1100 905-565-1100.
Chandni
Banquet Hall.
Intelligent choice locations, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ.
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना.
वही बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है. और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773.
The 20th annual Mosaic Festival presented by TD Ready Commitment. Join us on August 1st and 2nd at Mississauga Celebration Square, bringing to you the largest South Asian artist lineup of the year. The amazing I'm a Big from Coke Studio, Apache Indian featuring DJ Raj, Josh the Band, Mikhail Hassan featuring Shahzad Ali Khan Kabbal, your host, actor and director Ali Kazmi, Nitin R. Mirani, and many more exciting local talent. Children's arts and crafts workshops, South Asian cuisine by 15 popular restaurants, Vendors Bazaar bringing South Asian clothes and jewelry, completely free admission. For details, visit mosaicfest.com.
ग्रिल इन द हार्ट मिसेस सागा में ऑर्डर वाया फोन इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383 ग्रिल इन द हार्ट।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती।